Brahmajyoti, Viraja, Pradana, Mahatattva, Creation of Sadashiva, Shambhu.
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वापस आए और अभी हम विरजा शंभुतत्व और इन सब चीज के विषय में हम चर्चा करेंगे.
Now we understand that all Vaikuntha planets float in Brahmajyoti.
तो हम जानते हैं कि वही सारे जितने भी वैकुंठ लोक है वो सब ब्रह्मज्योति में वो रहते हैं.
Brahmajyoti has a few different definitions or you may say the sources. One is Vaikuntha planet himself illuminates and another one is the Krishna's own body illuminates.
तो वैकुंठ ब्रह्मज्योति जो है उनका दो स्रोत है. एक है कि वैकुंठ लोक स्वयं उनका प्रकाश है और कृष्ण का शरीर भी उनका प्रकाश है.
Now, what is it that shines in Brahmajyoti?
क्या चीज है जो ब्रह्मज्योति में प्रकाशित हो रहा है?
There are millions of jivas shining.
तो ब्रह्मज्योति में बहुत सारे जीव जो है वो प्रकाशित हो रहा है.
When Krishna kills a demon, he merges into his body and he attains Brahma.
तो कृष्ण जब असुरों को वध करते हैं तब वो ब्रह्मज्योति में लीन हो जाते हैं.
So, now, who attains Brahma?
कौन ब्रह्म को कौन प्राप्त करता है?
The impersonalist, jnanis, they attain the Brahma.
जो निर्विशेषवादी हैं, ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं.
So, what is the position of jiva in Brahma?
जीव का ब्रह्म में क्या क्या स्थिति है?
It's a funny position that the spiritual body is not active, it's in the form of bija, and jiva is out of material world with full understanding that there is nothing to do with material world, material senses. But the jiva did not realize spiritual varieties and service to the Lord.
तो ये ब्रह्म ज्योति में जीव का स्थिति ऐसा है कि एक तो है ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझे भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन साथ साथ में उनकी पूर्ण आध्यात्मिक जो स्वाभाविक कार्य है उसमें युक्त नहीं है.
So, the position is of understanding such aspect of the Lord. Out of such eternal, only such, only that eternity aspect is realized.
जो जीव सत्य का ही साक्षात्कार करते हैं, सच्चित आनंद में सत्य का साक्षात्कार किए जीव ब्रह्म में लीन होते हैं.
So, that is partial knowledge about the God. It's not full knowledge.
तो भगवान के बारे में ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अपूर्ण ज्ञान है.
So, why? Because the spiritual form of the jiva and of the Lord is not realized.
तो ये ब्रह्म में जो जीव हैं, वो भगवत भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हुआ है. तो भगवद्गीता में हमको ज्ञान प्राप्त होता है जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण किए हैं और सबको समुद्र दृष्टिकोण से भावना से देखते हैं और जो तपस्या करते हैं, तो वैसे जो जीव जो भौतिक जगत से निवृत्त हो चुके हैं वो ब्रह्म में स्थित है और उन लोगों को शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है.
That Brahman is not the whole me. I am Pratishtha. I am the agent of the Brahman. I am the Supreme.
So Krishna कहते हैं ये जो ब्रह्म की जो वर्णन हुआ है वो कुछ और नहीं है बल्कि उसका प्रतिष्ठा मैंने किया है. मैं उनका आधार हूँ ब्रह्म का.
Now, so many times we hear in India particularly and now all over the world the Maya philosophy that ultimately Lord there's no form, no senses, no qualities.
तो ये जो पूरा विश्व में बड़ा विख्यात है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है इत्यादि जो बातें कहना, अंततः उनका कहना यह था कि भगवान नहीं है, तो वो सब ब्रह्म में वो लीन हो जाते हैं, तो वो एक हो जाते हैं.
But when you merge into Brahma, you don't become God.
तो आप ब्रह्म में जब लीन हो जाते हैं तो वो आप भगवान नहीं बनते तो फिर भी आप अपना व्यक्तित्व बना के रखते हैं तो लेकिन फिर भी ना हमारे पास स्थूल शरीर है ना हमारे पास सूक्ष्म शरीर है ना आध्यात्मिक शरीर है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास कोई शरीर ही नहीं है तो ये जो वैकुंठ लोक के आजू बाजू है बहुत सारे जीव हैं जो ब्रह्मानंद को अनुभव करते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते एक दूसरे का अस्तित्व दूसरे को मालूम नहीं रहता है तो केवल भौतिक दुखों से निवृत्त होने का आनंद ही उनको प्राप्त होता है हमने भानु महाराज से एक बार प्रश्न पूछा था कि वो जीव का जो चेतना है उस समय ब्रह्म में क्या रहता है तब उन्होंने कहा कि वो जीव जो है वो एक बल्ब जैसा है जो केवल प्रकाशवान रहता है बस तो मायावादी लोग कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी कहते हैं हम सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे लेकिन सारे जितने भी असुर है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो क्या ये आपका गंतव्य है जहाँ असुर जाना चाहते उधर जाना चाहते हो आप तो आप शिष्यपाल दंतवर्क जहाँ गए उधर जाना चाहते हो या अर्जुन या हनुमान जहाँ गए उधर आप जाना चाहते हो दो प्रकार के लोग हैं एक है ब्रह्मवादी दूसरे है मायावादी तो ब्रह्मवादी वो है जो जानते हैं भगवान का सुंदर रूप है और उनके सारे गुण हैं लेकिन उनका भगवान के जो स्वरूप है उनके प्रति आकर्षण नहीं है बल्कि उनका आकर्षण रहता है भगवान के जो शरीर से उत्पन्न प्रकाश है ब्रह्म के प्रति लेकिन वो भगवान के प्रति वो अपराध नहीं करते तो जैसे चार कुमार हैं वो ब्रह्मवादी थे विष्णु से मुलाकात होने से पहले तो सुखदेव गोस्वामी हैं वो भी वो भी ब्रह्मवादी थे भागवतम सुनने से पहले ब्रह्मवादी जो हैं जब वो विष्णु से या उनके भक्तों से जब उनका मुलाकात होता है तो वो जल्दी से वो भक्त बन जाते हैं
But my brothers, apart from thinking that we are all one, we are all God, they do not believe in Krishna's name, form, qualities, past tense. They think, oh, Krishna is best Maya's creation.
तो ये जो मायावादी हैं जो भी वो कृष्ण के रूप गुण लीला इत्यादि को स्वीकार नहीं करते लेकिन वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो माया का सबसे सुंदर सृष्टि है हाँ माया का जो सात्विक प्रकाश है ईश्वर इस प्रकार मानते हैं ये जो है कृष्ण के प्रति वो अपराध करते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी जो है वो कृष्ण अपराधी है प्रभुपाद ने कहा कि वो कृष्ण को मारना चाहते हैं तो प्रभुपाद ने कहा उनके भगवान के पास कोई हाथ नहीं है कोई अंग नहीं है वो इस प्रकार कहते कहते भगवान को मारना चाहते हैं। तो जो वैदिक वेदों के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको वो सही तरीके से नहीं समझे हैं। उपनिषद जो हैं जो परम सत्य के बारे में हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए हैं।
1130 उपनिषद
एक हजार 130 उपनिषदों में कुछ ही उपनिषद है जो भगवान की व्यक्ति जो स्वरूप का वर्णन कर सके।
उपनिषद फर्स्ट टेल यू कंडीशन सोल यू हैव मटेरियल बॉडी यू हैव मटेरियल बॉडी यू हैव मटेरियल माइंड बट लॉर्ड हैज नो मटेरियल बॉडी नो मटेरियल क्वालिटीज नो मटेरियल फॉर्म not under the laws of nature. So Upanishad first starts with negation. What God is not. Then later they explain what God is.
तो उपनिषद बार बार हमको इस बात को कहते हैं कि आपके पास में भौतिक शरीर है, भौतिक मन है, भौतिक इंद्रियां हैं, और बाद में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान के पास भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक मन नहीं है, और ऐसा वर्णन करते हुए भगवान कौन नहीं है उसका वर्णन आपको उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के निराकार अव्यक्त निर्गुण इन शब्दों से भरा हुआ उपनिषद।
So mayavad is the conclude. That's it. Spiritual means no varieties, no form, no planets, no activities, no relationships. Simply sarvam kalavidam dhamma. Simply everywhere is dhamma.
दो मायावादी लोग इन शब्दों को लेके वो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई रूप नहीं है, कोई विविधता नहीं है, कोई क्रिया कार्यकलाप नहीं है, ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्वम कलुइदं ब्रह्मन।
Now, they read all Upanishads, then they find, then they come to...
गोपाल तापन उपनिषद।
Then Upanishad says suddenly, Sachitananda Rupaya, Krishnaya Krishna Karanya, Namavedanta Vedaya, Gurave Bodhisakshina. What to do now? Now suddenly Upanishad says, Sachitananda Rupaya.
तो ऐसा पढ़ते पढ़ते जब गोपाल ताप उपनिषद को पढ़ेंगे तब उनके पास वो श्लोक मिलता है जहाँ वर्णन है सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, तब तुरंत वो अचंभित हो जाते हैं।
I'll tell. Today Harsh came to temple without dhoti, without kurta.
Harsh करके अपने वक्त हैं। अगर मैं उनके बारे में वर्णन करने लग जाऊं कि वो मंदिर में आए थे धोती कुर्ता के बिना आए।
So if anybody hears this, Harsh came without dhoti, without kurta. Why he did so?
तो हम सब लोग अरे धोती कुर्ता के बिना आ गया Harsh.
It doesn't mean that he came without clothes, but he came in pants and shirt.
इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ शरीर कुछ वस्त्र नहीं पहने थे, इसका अर्थ वो पैंट शर्ट पहन के आए।
So Upanishad said, God has no form, no qualities, no name, not material one, but Sachidananda Rupaya, Sachidananda Vigraha, he has a spiritual one.
भगवान के पास जब उपनिषद वर्णन करते हैं कि उनके पास कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है इत्यादि कहा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं उनके पास भौतिक रूप और भौतिक गुण नहीं है, इसका अर्थ यही है कि उनके पास एक सुंदर रूप है, सच्चिदानंद रूप है।
So mayavadi they don't like this explanation of ours.
तो मायावादियों को ये जो हमारा जो वर्णन है उनको अच्छा ही लगता है।
So we have to call shastras for.
तो हमको ये शास्त्र का प्रमाण देना पड़ेगा उनको।
Okay. Here, it is explained.
उपनिषद पद्म पुराण से वर्णन है कि वही भगवान है हरि, जिनको उपनिषदों में जिनका नाम नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका गुण नहीं है, ऐसा जिनको वर्णन किया गया वो कोई और नहीं है बल्कि वो हरि है।
So here Padma Purana explained, Yosav Nirguna Yukta Shastra Shuchagad Ishwara Prakrita Veya Samyukta Gunaya Gunatvaya Uchatir. Means that when the Vedic literature describes the Supreme Personality of Godhead, the controller of all universes, as being Nirguna, without qualities, it should be understood to mean that he has no inferior material qualities, because Smriti says that Lord is
तो पद्म पुराण में आगे कहा गया है कि जिस जिनको वर्णन किया गया है निर्गुण करके, निराकार करके, वो अस्तित्व में वो भगवान हरि का ही वर्णन है, क्योंकि हरि का वर्णन हुआ है जो सारे सद्गुणों से संपन्न है।
You realize how horrible it is.
अस्तित्व में जब ये ब्रह्म का स्थिति को हम थोड़ा विचार करेंगे उसके ऊपर, तो हम ये जान सकते हैं कि वो कितना भयानक स्थिति है।
This is only a place where you cannot do any service because you have no body.
तो ब्रह्म ऐसा स्थिति है वो जहाँ आप सेवा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई शरीर नहीं है।
Even if we go to hell, at least some devotees are there.
अगर आप नरक में जाएंगे कम से कम कुछ तो भक्त मिलेंगे आपको। उधर मंदिर के अध्यक्ष मिलेंगे आपको, यमराज भी मिलेंगे। कम से कम आप एक शुद्ध भक्त को देख सकते हो, हरि कथा को श्रवण कर सकते हो। तो ब्रह्म कम से कम नरक में आप कुछ तो सेवा कर सकते हो, आप तो ब्रह्म में वो भी नहीं कर सकते हो। तो भक्तों के लिए जो नरक है, कैवल्यम नरका आए थे, जो कैवल्य जो है वो नरक है, ब्रह्म जो है नरक माना, नरक से भी भयानक है। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो ये जो ब्रह्म में लीन होने का ये जो विचार जीव में कब आया?
जीवा केम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड इच्छा प्रेशस एंड केम एंड बंद और मोहन बारता बिकॉज़ ऑफ डिजायर टू एंजॉय एंड बाय दैट
तो ये जो जीव है आध्यात्मिक जगत से आया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हमने कृष्ण से कृष्ण को भोगने का इच्छा हुआ तो तुरंत हमको ये इच्छा उत्पन्न हुई। तो इस भौतिक जगत में हर जीव इस आशा में है कि ईश्वरोहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ और मैं भोगना चाहता हूँ। तो ये जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तब वो जीव को एहसास होता है कि मैं इधर क्या क्या सुख को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। तब जीव जो है ऊपर की लोकों में जाना चाहता है, स्वर्ग लोकों में जाके सोच सकते हैं कि इधर कुछ और सुख मिलेगा मुझे। असत में जीव जो है इस भौतिक जगत में कृष्ण का सेवा करने में कोई रुचि नहीं रखता है। तब वो मायावादी गुरु आते हैं जीव के पास। तो ये मायावादी गुरु आके कहेंगे उस जीव को, क्या तुम इस भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हो? ये तो कुत्ते बिल्लियों को सुअरों को प्राप्त मिलने वाला सुख जो है उसके लिए क्यों प्रयास करते हो? तो ये क्या है जो स्वर्ग में उर्वशी मेनका इत्यादि जो है वो सब कोई और नहीं है, माया है।
why you want to become Indra, you want to become Surya, you want to become Brahma. What is the use? Whether you become Bhagavan and enjoy.
तो आपको ये सब इंद्र बनने के क्या फायदा, ब्रह्मा बनने के क्या फायदा है, ये सब छोड़ो, भगवान बनो और भोग करो। वैसे जीव जो है भोगना चाहता ही है, भोगने की इच्छा तो है, जब मायावादी गुरु के संगति में जब ये बात को सुनता है कि आप भोगो, इन छोटे मोटे लोगों के जैसा क्यों भोगना चाहते हो, भगवान जैसा भोगो, जैसे वो सुनता है तो तुरंत जीव को बहुत अच्छा लगता है सिद्धांत। तो ये जो जीव भगवान से भिन्न भोगने का विचार ही ये भौतिक जगत में हमारा आगमन का कारण है। ये जो जीव है जब इस बात की सुनता है कि भगवान बनो, तो उसकी दुर्गति ऐसी होती है कि वो ब्रह्म में कहीं दुनिया के कोने पड़ा रहता है और हरिकथा सुनने का जरा उनका मौका भी नहीं मिलता है। तो ये ब्रह्म में लीन होना इस प्रकार है, ये फ्रिज के बराबर है, जीव को एक फ्रिज में डाल दिया और बोल दिया बस कुछ मत करो, बाकी सब लोगों को शांति से जीने दो और मायावाद का प्रचार मत करो।
It's very amazing. I mean, it's a shocking to hear. Prabhupada said, for love of his pure devotees, Krishna reciprocated pure love.
तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक भागवत में एक लिखते हैं एक जगह, शुद्ध भक्तों के साथ भगवान शुद्ध भक्ति प्रेम का आदान प्रदान करते हैं।
Then he said, for those impersonalists who are not interested in Bhagavan's personal feature, God has no personal interest for them.
जो उन लोगों को भगवान के जो व्यक्तित्व के प्रति कोई रुचि नहीं है, भगवान उनके प्रति अपना व्यक्तित्व रुचि प्रकाशित नहीं करते।
Can anything worse happen to us that even Bhagavan given up hope on us?
तो ऐसा हो सकता है कि भगवान भी हमारे ऊपर आशा छोड़ दिए।
चलो, let me break all four principles, no? Let me go to hell. Let me become cockroach, no? But some devotee will come and chant on my ear and some prasadam I will get, you know? At least devotee will think, this foolish fellow breaking four principles, let me offer prayers for him. But in Brahman, even Bhagavan doesn't show interest for these souls. Can anything worse happen to us?
देखिए, अगर कोई व्यक्ति चार नियम तोड़ता है, अनेकों पाप करता है, नरक जाता है, वो कॉकरोच भी बन जाता है, हो सकता है कोई भक्त का संगति में आके हम कुछ प्रसाद मिल जाए कॉकरोच के रूप में, हमारी हरी कथा सुनने को मिल जाए। लेकिन अभी देखिए, ब्रह्म का परिस्थिति ऐसा है, ब्रह्म में लीन होने के बाद उस जी का परिस्थिति ऐसा है कि भगवान भी उनके ऊपर आशा छोड़ देते हैं कि इससे बढ़कर कौन सा दुर्गति हो सकता है। तो ब्रह्म का अर्थ है कि सत्संग नहीं है, कीट जन्म हो, तो भक्तजन ठाकुर कहते हैं कि भले मुझे कुत्ते का जन्म लेना पड़े, मैं भक्त के घर में कुत्ता रहना चाहता हूँ, कीट जन्म।
Okay, so dear devotees, let us not go to Brahman.
प्योर डिवोटीज जो हैं वो ब्रह्म में जाना नहीं चाहते, इसलिए ब्रह्म का हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी।
So, now, in one corner of that Brahman effulgence, yes, Lord, you are still interested. Jivas are shining.
The
इनका प्रश्न यह है कि जब ब्रह्म लीन हो जाता है तो परमात्मा कहाँ जाता है, परमात्मा जीव के साथ में रहता है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि परमात्मा आध्यात्मिक जगत में कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित है।
Krishna replaces Paramatma in the path of devotees in spiritual world. Two and four.
आध्यात्मिक जगत में परमात्मा के जगह पे भगवान कृष्ण स्वयं द्विभुज रूप में रहते हैं।
So far as I remember, Paramatma goes back to Karnataka Shivaraka Shivaraka.
तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा ज्ञान है, तो परमात्मा जो है क्षीरोदाक्ष विष्णु में वो लीन हो जाते हैं। भले ही कुछ भक्त कहते हैं कि ब्रह्म में भी परमात्मा रहते हैं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि क्षीरोदाक्ष विष्णु में परमात्मा नहीं जाते। तो परमात्मा जो है भगवान का केवल भौतिक जगत में जीव के साथ कार्यान्वित करने के लिए ही है। देर आर टू काइंड्स ऑफ ब्रह्मन मर्जिंग टू ब्रह्मन, वन इज ब्रह्म साहुज शरीर साहुज, यू नो टॉक अबाउट द शरीर साहुज मर्जिंग इन द बॉडी ऑफ कृष्ण एंड मर्जिंग इन टू द ब्रह्मन, डिस्टिंक्शन बिटवीन देम।
That you come in the body and come out as a his effusion, you are back into Brahman.
Okay.
Through the body of Krishna, you attend with Brahma Jyoti. That's the idea. That's why we say Krishna's effusion is Brahman. Yasya Prabhupada Bhavatoja Vedanta Goti Koteshu Yasuvatu Vindam. That Brahman Nishkalam Ananta Nashesha Bhutam. Means that Lord's body is effusion, but these are jivas coming out.
जो जीव ब्रह्म शरीर भगवान के शरीर में लीन होता है वो भी ब्रह्म के रूप में शरीर से बाहर प्रकट होता है। हमको आज का क्लास शुरू करना, लेकिन आपका प्रश्न लिया जा सकता है, हाँ बताइए। सो इस क्वेश्चन इज टिपिकल क्वेश्चन। In the spiritual world, a jiva had desire to enjoy separately from Krishna. Is there any still in here in the spiritual world desire is there to enjoy separately from Krishna? Where did it come from?
Right. Okay, wait 5 minutes. We are coming to Garna Ocean. We are going to discuss famous topic. How jiva fell down?
So, आप थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए, जब हम कारण सागर में जब आएंगे उसका वर्णन में तब हम चर्चा करेंगे जीव का पतन किस प्रकार हुआ, ठीक है?
Okay. Now, one more thing about Brahman. Prabhupada said that Avishuddha Buddhi, of course, Shloka says in Bhagavatam, due to imperfect, impure intelligence, jiva gets stuck into Brahman. But, Prabhupada said, jiva feels lonely there, because jiva is also Ananda Maya Vihasa. So jiva comes from Brahman back to material world and become
तो जीव ब्रह्म में कोई कार्य क्रिया का लक्ष्य नहीं होने की वजह से वो जीव वापस इस भौतिक जगत में आके कोई बड़ा दार्शनिक बनता है, कोई समाज कार्य करने वाला व्यक्ति बनता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में कभी कभी एक एक बादल छा जाता है। तो ये जहाँ बादल छा जाता है उसके नीचे जो है कारण सागर है।
कारण सागर ocean made of perspiration of four Vedas.
तो एक कारण सागर जो है वो चार वेदों का जो पसीना है.
So the Sankarshan, Lord Sankarshan from Vidya Chaturvyuha, he expands into first Purushavatar called Karana Dakshay Vishnu or Mahavishnu.
जो द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण हैं वो अवतार लेते हैं कारणदाक्ष विष्णु के रूप में.
So, कारणदाक्ष विष्णु he lies down in a Karna ocean or Viraja river.
तो कारण सागर या विराजा में वो सोते हैं.
So, there is cloud here, you can see, it covers one portion of the spiritual sky. And one side of that Karna ocean is spiritual world, another side very soon material world will be manifest.
तो कारण सागर के एक बाजू जो है वो आध्यात्मिक जगत है और दूसरे बाजू जो है भौतिक जगत यानी अभी जिसका निर्माण होने वाला है.
Now what we read from Brahma Samhita that Ramadev, eternal associate of Lord Karna Dakshay Vishnu, and Vishnu, they are in yoga nidra, in the divine slumber.
ये को कारण दक्ष विष्णु और उनकी जो कंसर्ट है वो रमा देवी वो योग निद्रा में रहते हैं.
Now, when Lord Vishnu, you see, yoga nidra doesn't mean that Lord sleeps. Yoga Goswami explains, yoga nidra means that Lakshmi and Mahavishnu perform unmanifested pastimes.
तो योग निद्रा का अर्थ ये नहीं कि वो सोए हुए हैं बल्कि वो अव्यक्त है.
Now, when Lord wakes up from divine slumber, he glances at his consort Ramadevi, and by her glance, by his glance, he shows, he expresses his desire, Ichha Shakti, desire to create material world.
तो जब ये जो योग निद्रा से उठते हैं भगवान महाविष्णु वो रमा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि अभी मुझे सृष्टि करना है.
So, just by glancing, Lord starts creation.
केवल उनकी दृष्टि मात्र से वो सृष्टि का क्रिया शुरू हो जाता है.
Sometimes, suddenly some guest unexpectedly comes to the house.
कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई अतिथि आ गया अचानक.
So husband immediately glances upon the wife and immediately she starts bringing water and this and that.
उनके पति जो है पत्नी के ऊपर थोड़ा दुष्प्रभाव करते हैं तुरंत वो पत्नी जो है सबको वो जितने भी अतिथि हैं उनके लिए पानी जल पान इत्यादि व्यवस्था करती हैं.
So Rama Devi understands Lord's desire for material creation, so her shadow becomes Durga. माया.
तो जब रमा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं उनकी जो छाया है वो माया बनती है दुर्गा जी.
And personified form of Lord desire for creation, Shambhu is born, Sadashiv.
जो भगवान की जो सृष्टि का इच्छा शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप शंभु का निर्माण होता है.
Now, this is so because Maya cannot stand in front of Vishnu.
क्योंकि माया जो है वो विष्णु के सामने स्थित नहीं रह सकती है. विष्णु में कोई अज्ञान नहीं है. तो माया देवी जो है बहुत दूर से विष्णु को प्रणाम करती है. तो ये जो इस भौतिक जगत की निर्माणकारी हेतु तो स्वयं महाविष्णु शंभु का रूप धारण करते हैं.
So when Vishnu deals with material world, he is called Shiva.
तो जब शंभु भौतिक जगत में उनको शिव कहा जाता है.
That is the form Prabhupada explains like this. Now, because of desire of Mahavishnu,
तो महाविष्णु की इच्छा से शिवजी प्रकट होते हैं.
महाविष्णु थाउजेंड्स ऑफ जीवास एमानेंट
तो महा विष्णु की आंखों से हजारों हजारों जीव प्रकट होते हैं
and he gives them to Shiva.
वो शिव जी को देते हैं.
So Shiva will carry jivas into pradhan.
तो शिव जी जो है प्रधान में वो जीवों को निहित करते हैं.
Pradhana means material nature in one manifested state.
तो प्रधान का अर्थ है कि भौतिक प्रकृति जब अव्यक्त रहता है उस स्थिति को प्रधान कहा जाता है, जहाँ सारे भौतिक तत्व हैं लेकिन वो सब कैसे हैं, वो अव्यक्त रूप में हैं. तो जैसे कोई कृपाश पूछा था, कोई मान लिया आपके पास एक मोटर बाइक है, एक उसको उसके सारे पार्ट निकाल के सब उसको बिछा के रख दीजिएगा. तो आपको कोई आगे बोलेगा आपका बाइक कहाँ है, तो आप दिखाओगे, सब देखो ऐसा पड़ा हुआ है, ले लो.
You put it back together and starts working. This is when pradhana turns into mahatattva. That material nature starts.
ये जो कोई आके बताएगा कि बस अभी आप बाइक को वापस सब पार्ट्स को जोड़ के और एक बाइक बन सकता है, तो ये जो बाइक है, जो व्यक्त हुआ बाइक है, यार दूसरे शब्दों में जब व्यक्त हुआ प्रधान है उसको महातत्व कहा गया है.
So Mahavishnu gives jiva shakti to Shiva, his icha shakti, desire to create, empowers Shiva. And then he gives him Trishul, Kala Shakti. Trishul means past, present and future, beginning of time. So Shiva takes time and Shiva's touch Pradhana, she turns into Mahatattva and material creation started, counting started of time.
तो उसके बाद महाविष्णु शंभु को जीव शक्ति देने के बाद और उनको काल शक्ति देते हैं त्रिशूल के रूप में. काल शक्ति त्रिशूल के रूप में जो तीन शूल हैं वो भूत भविष्य वर्तमान हैं, जिसके द्वारा शंभु वो प्रधान को स्पर्श करते हैं जहाँ से समय की गणना शुरू होती है.
So, we understand that, aham bija prada pita.
तो प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर में कहते हैं कि हम बीज प्रदा पिता, तो इस ये सूचित करता है, शिव जी को सूचित करता है. तो इसलिए हम शिव जी को पूजा करते हैं लिंग रूप में, क्योंकि वो इस भौतिक जगत का सृष्टि का प्रारंभ से हुआ है.
So we understand that they are actually external cause of creation, but real cause behind this Mahavishnu's desire.
तो वो लोग जो हैं सृष्टि के पीछे जो बहिरंगी कारण है उसको ही जानते हैं, लेकिन अस्तित्व में सृष्टि के पीछे शिव जी के पीछे शंभू के पीछे भी कारण है वो नहीं जानते. तो महाविष्णु की ओर से शिव जी जो हैं, शंभू जो हैं, वो माया के साथ आदान प्रदान करते हैं, माया के साथ वो कार्यकलाप करते हैं. तो वो शिव जी को कभी हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे जीवों का ईश्वर है लेकिन महाविष्णु को छोड़ के.
Now, one thing important to understand that Mahavishnu's desire for procreation takes form of Shambhu. Before he touches the Maya, he is Vishnu Tattva, he is called Sadashiva and he resides in Vaikuntha Loka called Sadashiva Loka.
तो जब शंभु का जो स्पर्श विष्णु इन जीव शक्तियों के द्वारा काल शक्ति के द्वारा करते हैं, वो करने से पहले वही शंभु का रूप था सदाशिव, वो विष्णु तत्व है, तो इसलिए वो वैकुंठ में निवास करते हैं.
He turns into Shiva Tattva and he resides in this Mahakala Dham, the place where time started, the material counting started.
तो जैसे वो प्रकृति को स्पर्श करते हैं, तो प्रधान को स्पर्श करते हैं, करते ही जैसे काल शुरू होता है और तुरंत वो शिव बन जाते हैं सदाशिव, और उस धाम में जहाँ शिव जी निवास करते हैं उसका धाम का नाम है महाकाल धाम।
So this is explained in the purport of this shloka of Brahma Samhita. Here Bhaktisiddhanta writes that next above Devadam is located Shivadam, one portion of which called Mahakaladam is enveloped in darkness. Interpenetrating this portion of Shivadam, there shines Hara Shivaloka, full of red light.
तो इस ब्रह्म संहिता का ये तात्पर्य में श्रील बक्सन ठाकुर लिखते हैं कि देवी धाम के ऊपर एक धाम है जिसका नाम है शिव धाम, और उसका एक भाग जो है महाकाल धाम कहा जाता है, जो अज्ञान या अंधकार के द्वारा आवृत है, और उसके ऊपर सदाशिव धाम है जो हमेशा प्रकाशवान रहता है।
This, what is we are describing now, this portion, actually happens here, the, on this corner, northeast, Ishana is there. This is Sadashivaloka. This is where it happens. This whole creation takes part here. But we didn't want to put Charles in that direction because people think, Om Atila Ol is a Om Vaikuntha, you know. So we put Charles down, but actually this happens seven layers here. There is Ishana, there is Shiva. Sadashivaloka is there, northeast corner of the Vaikuntha.
अरे हमारे थोड़ा सा ज्ञान के लिए, वो ये जो ईशान कोण में ये जो सृष्टि है सदाशिव लोक इत्यादि होता है वैकुंठ के, हमने उधर उसको चित्रीकरण उधर नहीं किया, क्योंकि अगर उधर कर दिया तो लोग सोचेंगे कि भौतिक जगत जो है वैकुंठ से भी ऊपर है।
ओके, नाउ जीवस आर देयर इन प्रदाना एंड शी टर्न्स इनटू महातत्व. And now Vishnu simultaneously, he breathes, he exhales. And from all four of his skin, of his body, millions of golden eggs, universes emanate.
So समय महाविष्णु क्या करते हैं, वो अपना श्वास को बाहर छोड़ते हैं, समय उनके जो रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं जो स्वर्ण रंग के अंड है।
Now they go the next. And they cluster together like a grapes, and they float on the Karna ocean just like a foam, like a bubbles.
तो ये जो जितने ब्रह्मांड हैं वो कारण सागर में तैरते रहते हैं जैसे कोई बल्ब तैरता हो पानी में।
And now, Bhagavatam says they stay like that for 10,000 years.
तो भागवत के अनुसार वो 10,000 साल तक वैसे रहते हैं। दस हजार हमारे मनुष्य सालों के साथ।
And then, when they enter into the Mahatattva now, the material elements which are there in material nature start enveloping them, earth, water, fire, air, ether, and Mahatattva, seven colorings each 10 times bigger than previous one.
तो जैसे ये जो अंड हैं वो जब प्रधान के संपर्क में आते हैं तुरंत ये भौतिक तत्व जो है ये अंडों को आवरण करना शुरू करते हैं। ये जो ब्रह्मांडों का आवरण जो है ये भौतिक तत्वों का आवरण एक दूसरे से वो 10 गुना ज्यादा है।
So, if we start this small bulb, this small Brahmanda, if we start enlarging with earth, then 10 times bigger water, then 10 times bigger, you know, if we want to put it in chart properly, our chart will be from Bombay to Delhi, you know.
अगर हम इस ब्रह्मांड के ऊपर हर तत्व का 10 गुना बड़ा चित्रीकरण करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो इधर बॉम्बे से दिल्ली तक पहुंचेगा। पहले से आप ये बता रहे हो करे 300 रुपए का चार्ट है, बहुत महंगा है बता रहे हो। तो हमें ये जो छोटा सा बल्ब जैसा है उसको हम थोड़ा सा बड़ा करने के लिए प्रयास किया है ताकि हमको ये पता लगे कि अस्तित्व में है क्या। ये 7 आवरण है।
Now,
तो अस्तित्व में भागवत में भी और अन्य जगह भी आपको कभी आठ आवरण का ज्ञान होता है। अस्तित्व में और एक आवरण है, इसका नाम है प्रधान। क्योंकि प्रधान जो है अव्यक्त होने की वजह से कभी वो कभी उसका उल्लेखन किया गया है, कभी कभी उसका उल्लेखन नहीं किया है।
This universe is dark inside, and now our Karma Dakshya Vishnu expands into Garbha Dakshya Vishnu and enters within each Brahmanda.
तो जब क्या करते हैं ये जो कारण दक्ष विष्णु हैं वो क्षुर दक्ष विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं।
Now Garbha Dakshya Vishnu enters into each of these bubbles.
तो ये जो गर्भोदाक्ष विष्णु जो है वो प्रत्येक कर्णदाक्ष विष्णु प्रत्येक गर्भ में गर्भोदाक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं।
ओके, ही टेक्स फ्रॉम शिवा ईच ग्रुप ऑफ जीवस फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्स।
तो शिव जी से जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं शिव जी के से वो लेते हैं।
एंड ही ब्रिंग्स देम पर्टिकुलर नंबर ऑफ जीव इन दिस यूनिवर्स, पर्टिकुलर इन दिस।
तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग जीवों को वो बांटते हैं। तो ये जो उनके शरीर से जो पसीना निकलता है वो इस ब्रह्मांड को आधा भर देता है, इसलिए उनको गर्भ सागर कहा जाता है। वो पूरा ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। असल में जो थोड़ा सा आधा से थोड़ा कम है। तो बलराम जी अनंत शेष के रूप में आते हैं और राधा रानी लक्ष्मी के रूप में आती हैं। तो जितने भी महातत्व से जो सबसे जो पुण्यात्म पुण्य जीव हैं उन सबको ब्रह्मलोक में निर्धारित करते हैं। जब जीव भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आया सबसे पहला कि उनको एक ब्रह्मा का पदवी मिला था। जब महाविष्णु जब सांस को अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं।
Now, we live 100 years.
हम 100 साल जीते हैं।
ब्रह्मा लिव्स 100 इयर्स आल्सो।
ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं।
But ब्रह्मा जी इज से देवतास वन डे ऑफ देवतास इज 6 मंथ्स हियर। वन नाइट ऑफ देवतास
देवताओं का एक दिन जो है वो हमारे लिए 6 महीना है, उनके लिए एक रात जो है हमारे लिए 6 महीना है। तो ब्रह्मा जी का एक सेकंड जो है वो इधर एक साल के बराबर है। तो ब्रह्मा जी आप जानते हैं कि गाल बाल बचनों को चुराए थे, तो उन्होंने चुरा के बस इधर रख के वापस जुड़ के देखे तो इधर एक साल हो गया था। आप सबको मालूम है ब्रह्मा जी कितना साल जीते हैं? 100 साल जीते हैं। तो ये एक सेकंड जो है वो ब्रह्मा जी का एक साल होता है इधर, तो कितने हैं 100 साल ब्रह्मा जी जीते तो कितना होगा अपने यहाँ से? तो हजारों 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 साल तक चलेगा।
So, universe exists till Brahma lives.
तो ब्रह्मा जी जब तक जीवित है तब तक ये जगत रहेगा।
So we go through 84 legs of species. We spend millions of lifetimes within universe.
तो जब हम 84 लाख जीवनों में भटकते भटके हम अनेकों अनेकों जन्मों को इधर बिता रहे
हैं।
इस प्रकार अनेकों अनेक योनियों में गए, कभी डॉक्टर बने, कभी इंजीनियर बने, कभी कॉकरोच बने, कभी अटल विटल सुतल इतने लोगों में गए। तो ये सब कितना समय है विष्णु महाविष्णु के लिए, एक सांस के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि वह महाविष्णु का समय क्या है, वो शाश्वत है। ये सृष्टि के विषय में है। तो ये प्रश्न ये है कि जीव जो है वो आध्यात्मिक जगत से आता है। प्रभुपाद जी ने इस प्रश्न का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है। अगर आप कोई शास्त्र पढ़ेंगे, कोई भी आचार्य ने इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि वो एक विषय नहीं था चर्चा का।
फॉर एग्जाम्पल रामानुजाचार्य से It is inconceivable to understand how jiva fallen to material world.
श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं ये अचिंत्य है किस प्रकार भौतिक जगत में जीव आ गया है।
Madhvacharya doesn't discuss at all program. He just discussed from within material world position of jiva. He doesn't even mention any program.
Madhvacharya जो है वो उसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं, वो केवल इस भौतिक जगत में जीव किस प्रकार है उसके विषय में चर्चा करते हैं।
So now the Gaupad was asked, how jiva fall down from spiritual world to material world? How is possible that spiritual world is so perfect, jiva falls down? But most of the time, we say that this is not important. The important is now how to come out.
तो जब प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जीव किस प्रकार इस जगत में आया, तो प्रभुपाद जी ने अनेकों बार इस प्रकार का जवाब दिया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको कैसे वापस जाना है। जैसे कि ये जवाब बराबर ठीक जवाब है, क्योंकि आप मान लो कि आप चलते चलते एक बड़ा गटर में गिर पड़े।
What is the cause of my fall down?
तो आप जब गटर में नीचे पड़े होगे तब वो पूछोगे बैठ के आराम से, मैं क्यों नीचे आया, क्यों गिर पड़ा?
First thing, how to come out? Then once you come out, you turn back and look, how did I fall in?
तो जब आप क्या सोचोगे सबसे पहला कि मैं कैसे बाहर आऊं? बाहर आने के बाद सोचोगे मैं कैसे अंदर गया?
In one time, Bhaktivinoda Thakur answered like this, that once you come up,
तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जब आप वापस भगवान के धाम में जाओगे तब आप जान सकते हो कि नीचे कैसे गिर पड़ा। लेकिन ये इस प्रकार का जो जवाब है हमारी अज्ञान को ढकने की बात नहीं है, खाली ऐसा जवाब देना है कृष्ण लीला है करके, ये बात नहीं है।
This is first level of answer. The most important, very important answer. It is that due to misuse of independence, we fall down. That's classical Prabhupada's answer.
तो हमारे जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग की वजह से हमारा पतन हुआ, ये श्री प्रभुपाद जी का वो जवाब था।
Okay, but the devotees, as a devotees, and it's still going on. Again, they are asking questions to Prabhupada.
तो भक्त होते ही बार बार प्रभुपाद जी से ऐसा प्रश्न पूछते थे।
So Prabhupada then really start explaining.
तो प्रभुपाद जी उनको वर्णन करना शुरू किए।
Okay, now you ask, now you get ready for the answer.
तो अगर आपने पूछा तो फिर अभी आप उस जवाब को सुनने के लिए भी तैयार रहो।
Prabhupada said like that, morning walk and the devotee asked him question.
तो एक बार चलते चलते सुबह मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी से एक भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा।
So Prabhupada said, when did you leave Lord? Why do you say you left the Lord? Where is the position that you are not with the Lord? Explain.
तो एक बार प्रभुपाद जी चलते चलते पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा समय है तुम कृष्ण के साथ में नहीं हो, बताओ।
For Krishna, matter and spirit
कृष्ण के लिए आध्यात्मिक हो भौतिक हो दोनों एक ही है, उन दोनों आध्यात्मिक क्योंकि उनका ही शक्ति है वो.
So we are always in Krishna's energy. The tatastha shakti means either we are under spiritual or we are under material energy.
तो तटस्थ शक्ति का अर्थ है कि कभी हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत है या कभी आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत है.
So for Krishna we are always with him.
कृष्ण के दृष्टिकोण से हमेशा उनके साथ में हम लोग.
But the thing is that our consciousness is covered. We don't realize this. But actually there is nothing like material world, Prabhupada said.
अंततः देखा जाए तो अस्तित्व में कोई ऐसा नहीं कि कोई भौतिक जगत करके है, केवल हमारा चेतना जो है वो प्रदूषित हो चुका है भौतिक गुणों के द्वारा. हम सोचते हैं कि हम भगवान से अलग हो गए लेकिन भगवान से हम कभी अलग नहीं है. जैसे कि एक बादल जो है वो सूर्य को ढक देता है, हम सूर्य को देख नहीं सकते.
प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा, नो, क्लाउड कैन नॉट कवर द सन, क्लाउड कवर्स आवर विजन, सो वी कैन नॉट सी द सन, सन इज नेवर कवर्ड.
तो जैसे बादल जो है ऐसा लगता है कि सूर्य को ढक दिया है, कभी नहीं हो सकता है बादल सूर्य को ढक सके. नहीं, बादल जो है हमारी आंखों को ढक दिया है. हमारा हम 24 घंटा कृष्ण के साथ में हैं, लेकिन हमारी जो आंख जो है वो ढक गया है. तो जैसे कि एक पुष्प है, अगर सीधा मैं उसको सूंघूंगा तो ये भौतिक है, अगर वही पुष्प कृष्ण को अर्पण करके सूंघूंगा ये आध्यात्मिक है. वही फूल है, अस्तित्व में चेतना में अंतर है. तो प्रभुपाद जी ने कहा शक्ति और शक्तिमान दोनों में अंतर नहीं है. हम हमेशा कृष्ण के साथ में है लेकिन यही बात है कि हम उनको देख नहीं सकते. तो हम जब कृष्ण भावना भावित पूर्ण जाएंगे पूर्ण तरीके से, हम कृष्ण को हर जगह हर समय हर परिस्थिति में देख सकते हैं. तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कृष्ण लीला इतना सुंदर इतना अद्भुत इतना मधुर है तो हम इसको छोड़ के कैसे आ सकते हैं इधर.
चैतन्य महाप्रभु
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा पतितम माम, मेरा पतन हुआ है. सब लोगों ने कहा इस बात को. चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है. काला कृष्ण दास कौन है? वो उनका सेवक है. तो काला कृष्ण दास जो है जीव है वो भगवान के साथ में वो दक्षिण भारत में चल रहे हैं, कृष्ण लीला में वो भाग ले रहे हैं चैतन्य लीला में. तो केरला में आप जब आए थे उस समय जो काला कृष्ण दास उधर के जो बटहरी जो स्त्रियां हैं उनको देख के आकर्षित हो गया. तो अगर कृष्ण लीला में है वापस वो भौतिक जगत में नहीं आ सकता है, ये बात जो है वो गलत है क्योंकि चैतन्य लीला प्रमाण है उसका. तो कृष्ण ने जो दुर्योधन को विश्वरूप दिखाया, भले ही आंशिक विश्वरूप था लेकिन फिर भी दुर्योधन ने उसको देख के सोचा कि ये तो कुछ माया है. तो भक्तिनाथ ठाकुर अगर दशमूल के तत्व में अगर देखेंगे उसके अंदर वर्णन करते हैं कारण सागर जो है वो जीवों से भरा हुआ है. तो उपनिषदों का एक उदाहरण देते हैं. What verse?
That one, the jiva is like a fish. He said jiva is like a fish. Some fish swim on this bank of the river. Some fish go to that bank of the river. Some jivas goes to spiritual, some jiva goes to material.
तो ऐसा वर्णन कहा गया है कि कुछ ऐसे मछलियां हैं तो जो भौतिक जगत में आते हैं और एक नदी में तैरते हुए कुछ मछलियां एक तट के ऊपर आ जाते हैं और कुछ मछलियां दूसरे तट पे जाते हैं। उसी प्रकार जीव कारण सागर में तैरते हुए कभी भौतिक जगत में आते कभी आध्यात्मिक जगत में जाते हैं।
Go this side, some jiva, that side. He said, just like pastors, if you put on scale, if you put too much, some will fall this side, some will fall that side.
तब उन भक्तों ने ठाकुर से उन्हें और पूछा, ऐसे कैसे कुछ जीव इधर आते कुछ जीव उधर चले जाते हैं। भक्तों ने ठाकुर ने कहा, जैसे कि आप कुछ जो राय के जो बीज है उसको अपने हाथ में डाली ऊपर से तो कुछ इधर गिरते कुछ उधर गिरते हैं। तब भक्तों ने ठाकुर से उन्होंने पूछा, क्या ये क्या वो एक संयोग है?
No, it is anadi karma.
तब भक्तों ने ठाकुर ने प्रश्न बताया कि अनादि कर्म,
अनादि मीन्स विदाउट बिगिनिंग।
Without beginning. तो अनादि कर्म का अर्थ है कि उनका कोई आदि नहीं है।
Means the jiva did not because of bad karma jiva fall down, because karma is yet uncreated. Before karma is created, jiva had desire. Looking at other side of viraja, looking what is there? Is there anything for me to enjoy there? It's a very subtle desire. It's not envy at Krishna, I want Krishna. It's not gross one. It's very subtle desire. What about that side? And here is spiritual world and opulence and Krishna is there. And 90% of jiva goes to spiritual world. And 10% more intelligent jivas, you know? They look at what is there, what is there? And Maya says, come and see and I'll show you everything. And Krishna is here.
तो ऐसा जो कुछ जीव जब देखते हैं, एक बाजू जो है कृष्ण लीला है, एक बाजू जो है माया है, तो 90% जीव जो है कृष्ण के पास ही आकर्षित होकर जाते हैं। लेकिन कुछ जीव जो है थोड़ा सा उनके अंदर वो स्वतंत्रता होने की वजह से, उसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होकर सोचते इधर क्या है, तब माया बुलाती आओ मेरे पास। अगर आप अपने आप को बड़ा बहुत अच्छा विशेष सोचते हो, सही बात है, आप उस 10% में हो।
इट इज डिजायर दैट ब्रिंग अस, डिजायर स्टार्टेड बिफोर फर्स्ट कर्म इज क्रिएटेड, सो इट्स कॉल्ड अनादि कर्म। दिस इज हाउ भक्ति में भक्ति एक्सप्लेन्स।
तो ये जो अनादि कर्म को भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं कि वो इच्छा जो कर्म बंधन में आने से पहले है, उस जीव को, उस कर्म को अनादि कर्म कहा गया है।
Now, once we realize our misfortune in material world, we go home back to work and surrender in practice of bhakti.
तो जब हम फंस जाते हैं इस भौतिक जगत में, तो हमारी जो भक्ति के बल पे हम वापस भगवान के धाम में जाते हैं।
कृष्ण से once you come up, you will not come back again now.
तो कृष्ण कहते हैं कि यद गत्वा निवर्तन्ते, एक बार भगवान के धाम में जाने के बाद वापस नहीं आओगे।
So devotee is again asked Prabhupada, the Prabhupada jiva still has independence, even coming back again, still jiva has independence, will it fall down?
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वापस भगवान की धाम में जाने के बाद भी स्वतंत्रता है, क्या वापस आएगा?
So प्रभुपाद से theoretically yes, jiva can live again anytime it wants, but doesn't happen.
तो एक theoretically देखा जाए ऐसे हो सकता है, आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
Now ऐसा होता नहीं, we took few years to find why not, why doesn't happen.
क्यों इस प्रकार क्यों नहीं होता है कि हमारे कुछ समय लगा उसको बताने के लिए। तो हम को मालूम पड़ा गोविश्ल गोपी परानंद प्रभु जो संदर्भों का रिसर्च करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब हम भगवान की धाम में वापस जाते हैं तो ये जो भगवान की जो शक्ति है वो हमको ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं ताकि हम वापस नहीं आए। तो जब तक प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं नहीं भेजेंगे तब नहीं।
ओके, आई
हैव क्वेश्चन।
It's okay, makes sense to you. This is what I know, I don't know more.
One thing is, the jivas, which were the anadi karma, they were from the stomach of Mahavishnu.
Well, yes, the first time jiva is mentioned there, really.
The question is, from the spiritual world,
yes.
That has ever happened or what?
That we do not know, because Prabhupada
said, Kanavish is also spiritual, Madhya Mahavishnu is also spiritual. But the jivas in the stomach of Mahavishnu are not, they have the karmas from the previous creation.
Maybe. You see, thing is like this, that when jiva, say for example, we are practicing bhakti now, okay? And say, maybe some of us will not achieve perfection. And Pralaya comes, universe is destroyed. Mm. Now, so that means we have to take birth again in another universe.
So the jivas who have been described, to come to this material world, are from the stomach of Mahavishnu, not from the spiritual world.
Okay, now, following up. Now, the jivas, where will jiva go when universe is destroyed?
जब प्रलय होता है तो जीव कहाँ जाता है?
Okay. Jiva will go into body of Mahavishnu.
जो महाविष्णु के शरीर में लीन होता है।
That is fully spiritual.
वो पूरा आध्यात्मिक है।
There is no jiva will not have subtle body or gross body in the body of Mahavishnu.
उनका उनके पास सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं होता है।
Jiva's karma and ahankar and subtle body is left in pradana with Lord Shiva before jiva enters into Mahavishnu's body.
तो जीव का जो अहंकार है वो सब कुछ जो है सदाशिव के पास छोड़ के वो महाविष्णु के शरीर में जाता है। तो जीव जो है जब महाविष्णु के शरीर के अंदर है तो वो वैकुंठ में है, लेकिन वो स्वयं अवस्था में है, उनको ज्ञान नहीं है। जब जीव वापस सृष्टि होता है तो जीव वापस सृष्टि में आता है। तो ग्रुप जीव के कुछ समूह हैं, वो जो है महाविष्णु के शरीर से आते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्म से भी जीव कुछ आते हैं इस जगत में है। ब्रह्म भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है।
So now, is there any reference that from Vaikuntha, from this planet, from Krishna Lila, Jiva comes down? There is no such a reference so far as I know.
तो उस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं अभी तक।
But Prabhupada said, we should go home back to Lokha. So go home, back to Lokha means we were there.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको वापस भगवान की धाम में जाना है, वो उससे द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हम पहले उधर थे।
So, there is no direct reference, from Prabhupada's statement, from Acharya's statement, something like that.
उसके विषय में कोई सीधा प्रमाण नहीं है कि आचार्यों से या प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से। तो अगर हम प्रभुपाद जी का वो बताएंगे कि हम कृष्ण से कभी अलग नहीं थे तो वो दूसरा दृष्टिकोण हो गया। तो हम भक्तिनाथ ठाकुर का जो प्रमाण है उनका जो उनको स्वीकार करना है, उनके अथॉरिटी को और बताना जानना चाहिए कि एक बार जाने के वापस नहीं आएंगे।
So this is going on for years, you know. In this one group says it's from Brahman we are coming, another group says it's from Karna Ocean Body of Mahavishnu, another group says we are coming from the Krishna Lilas. But this is difficult to get really exact conclusion.
तो आप सबको मालूम है इसके विषय में बहुत चर्चा चल रही है इस्कॉन में बहुत सालों से। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म से आए, कुछ लोग कहते हैं कारण सागर विष्णु से आए, कुछ लोग कहते हैं नहीं भगवान की लीला से आए हैं, कि अलग अलग प्रकार के मंत्र है मत है। आपका कोई इस्कॉन सन्यासी या कोई आएंगे उनसे प्रश्न पूछे तो बोलेंगे अरे वही पुराना बात वापस पूछ रहे हैं। ये जो सात आवरण हैं उनमें से मन और बुद्धि का उल्लेख नहीं है तो वो ये भी तो सूक्ष्म शरीर का भाग है। हम जानते हैं कि महातत्व जो है वो 24 तत्वों से बना हुआ है।
Sometimes you find all of this with Mahatattva. Sometimes you find Pradhana mentioned. So really, if Mahatattva is mentioned, means includes intelligence and mind. Absolutely, it's a subtlety.
Bhagavatam mein kabhi man, buddhi, ahankar aur chitta ka varnan hai, kabhi Mahatattva ka varnan hai, ki ek hi baat ko alag alag tarike se prastut kiya gaya hai. Jab ye Mahatattva shabd aaya hai, to ye samajhna chahiye ki uske andar man aur buddhi bhi hai.
In Bhagavatam purpose, you will find at least 3 or 4 different versions.
तो भागवतम के जो तात्पर्य है उसके अंदर 3-4 प्रकार के वर्णन उनको प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी 3 का वर्णन है, कभी 4 का वर्णन है, कभी 1 का वर्णन है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की गणना हुई है, अंततः तो एक ही चीज का वर्णन हुआ है। महातत्व का एक बार उल्लेखन हुआ तो समझना चाहिए कि सब चीज का उल्लेखन हो गया है, वो सूक्ष्म है। वेयर आर द 3 मोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम सत्व रजस तम, वेयर आर दे एग्जिस्टिंग? ये जो प्रधान में तीनों गुण हैं, जैसे आप ये दो बादल दिख रहे हैं उसमें वो 3 गुण हैं प्रधान में, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। जब वो महाविष्णु का जो दृष्टिपात होता है तब वो महातत्व के रूप में परिणित, तब दिखाई पड़ता है वो। तो भागवतम का अगर दूसरा स्कंद पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न का जवाब हमको उधर प्राप्त होगा। तो शिवजी जो है अहंकार के जो अधिष्ठात देव है, अहंकार का 3 स्तर है, एक है सत्व रजस तम। पहले बार जो गुणों का जो प्राकट्य है उस समय होता है जब अहंकार ये तीनों गुणों के माध्यम से सूक्ष्म इंद्रियों का मैनिफेस्टेशन या व्यक्तिकरण होता है। तो पहली बार ये जो तत्व है वो ये जो आवरण के रूप में दिखाई पड़ता है। तो आप दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे तो उसके अंदर वर्णन है किस प्रकार सबसे पहले सूक्ष्म तत्व का प्राकट्य होता है और धीरे धीरे से वो स्थूल तत्व का प्राकट्य होता है। तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में तीनों गुण प्रधान के अंदर है। तो सूत्र महाराज ने उसके और बहुत सुंदर प्रवचन दिया है, तो जिसके अंदर उन्होंने वर्णन किया किस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल का प्राकृति होता है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जब उन्होंने पूछा कि तमस बुद्धि क्या है, वो क्या है, वो सब चीज़ें क्या हैं, तब उन्होंने सबसे पहले कहा आप क्या वेदांत पढ़ के आओ तो बाद में उसको समझाऊंगा। बहुत जटिल हैं ये कोशों का भी विज्ञान है, उसका वर्णन वेदांत में हमको प्राप्त होता है। तो जीव का जो इच्छा है वही है वो सृष्टि का हेतु। तो अगर हमको भोगना है तो सबसे पहला हमको भगवान को भूलना होगा, तभी तो भोग सकते हैं। तो इसलिए अहंकार का आवरण सबसे पहला आवरण है। तो ये जो अहंकार का अज्ञान से ही सारा जगत का शुरुआत होता है, ये भागवत में कहा गया है। तो भक्ति का यही अर्थ है कि हमको ये अहंकार से मुक्त होना है। तो अहंकार का अर्थ है कि हम करोमि, मैं करता हूँ, लेकिन भक्त क्या कहते हैं, किम करोमि, मैं मुझे क्या करना बताइए। तो सबसे पहले भक्त लोग क्या कहते हैं, प्रणाम करो,
हम करता हूँ।
इनका प्रश्न है कि कलयुग में जनसंख्या आबादी बढ़ रही है क्या, हाँ आध्यात्मिक जगत से पतन भी बढ़ रहा है क्या? केवल पढ़ा लिखा ही उस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, जो उसका वो उनका जो दिमाग धुल गया है, वही व्यक्ति पूछता है। तो ये जो केवल जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये केवल एक प्रोपेगेंडा मात्र है, एक प्रचार मात्र है। ये जो आजकल ये स्कूल कॉलेज है, जो आधुनिक विज्ञान है, शिक्षा की प्रणाली है, वो एक कतलखाना है। ये आपका गलती नहीं है, बस आप एक और इसको मान के चलिए। आप देखिए कितने आत्मा हैं, अनंत है। कितने योनियां हैं, 84 लाख। चौरासी लाख योनियां है, अर्थ इसका अर्थ ये नहीं कि केवल 84 लाख आत्माएं हैं, जीव है। तो जैसे कि एक पक्षी का जीव योनि लेंगे, उसके अंदर अनेकों अनेकों अनंत अनंत जीव हैं उस पक्षी योनियों में। प्रश्न यह है कि कौन सा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कौन सा मनुष्यों का पॉपुलेशन बढ़ रहा
है?
कितने मनुष्य बताइए, छह सौ करोड़ है मनुष्य। तो मेरे शरीर में कम से कम 700 करोड़ जीव है। तो बहुत सारे मेरे खाली हाथ में बहुत सारे लाखों कृमि हैं, कीटक हैं, तो मुझे जेन नहीं देख नहीं सकता। तो कितने सारे जीव है मालूम है आपके शरीर में? बारिश के मौसम में मच्छरों का पॉपुलेशन 3 गुना हो जाता है।
What is happening actually, that human form is increasing, that is due to some kirtan movement, that people don't go to hell, they take directly human form even once they have Hare Krishna. This is Sankirtan.
ये संकीर्तन मूवमेंट की वजह से मनुष्यों की आवाज बढ़ रही है, क्योंकि एक बार भी कृष्ण का नाम सुना तो कम से कम नीचे की ओर में नहीं जाएगा वो मनुष्य बनेगा नहीं तो यमराज का जो गेस्ट हाउस है पूरा बुक ले कर लेंगे हरे कृष्णा कभी तो शाम को भी प्रभु जी का प्रवचन होगा 7:30 बजे सब लोग आ जाइए और आखिरी प्रवचन होगा भौतिक जगत के अंदर जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनका स्थान है इत्यादि चीज़ों का वर्णन होगा तो आप ये जो चार्ट देख रहे हो जो इधर लगा हुआ है जो आपको जो दिखाया जा रहा है प्रोजेक्टर में वो उपलब्ध है प्रभु जी का इधर उसका 300 रुपये उसका नाम है आप उसको खरीद सकते हैं और साथ साथ में ये जो प्रवचन दिए हैं उनका CD भी उपलब्ध है वो कृष्णदास प्रभु से ले सकते हो वो प्रभु इंग्लिश में उसका प्रवचन है 10 घंटे का सेमिनार है तो मैं निवेदन करूँगा सभी भक्तों से कि आप निश्चित रूप में आप एक चार्ट लीजिए क्योंकि कृष्ण का चित्र तो हमारे घर में लगाते हैं लेकिन कृष्ण का जो धाम है किस प्रकार सृष्टि करते हैं उसका भी चित्र घर में होगा तो अच्छा रहेगा आपको कहाँ जाना जैसे आप कहीं जाते तो एक मैप लेके जाते हो ना ना कहीं तो इसी प्रकार आपको भगवत धाम जाना है कहाँ है वो मैप लेके जाइए हाँ तो वो एक बुक है भक्ति का स्मारक भक्ति का स्मारक लिखा हुआ बुक है ग्रंथ है बहुत सुंदर ग्रंथ है इसको हमने इधर प्रकाशित भी किया था लेकिन प्रभु जी उसके बारे में प्रकाशित करेंगे बताएंगे तो आप उसको भी ले सकते हैं बताइए
Yeah, there is one amazing book because you see, we are speaking about demigods. We today establish Narayana is superior to Shiva. We didn't discuss details, but you know, how to preach, how to present to people, how to explain them. They are bogus gurus, they are devatas. How to preach strongly but not fry people, and how to present Siddhanta without compromising. It is an amazing book with hundreds of Prabhupada's quotes. It's called Preaching Strongly in Srila Prabhupada's Service. Because every preacher must know how to present the truth, Siddhanta, without twisting our philosophy, without frying out the people, benefiting people. So it's an amazing book for all those who are preachers. I will really recommend to read. It's very well received among our ISKCON preachers. Because it really shows the spirit of Prabhupada. He spoke very strongly, but he was able to attract people and make them devotees. So amazing.
एक बुक है स्पीकिंग स्ट्रांगली करके इन प्रभुपाद सर्विस भक्ति का महाराज का लिखा हुआ बुक है ये बहुत सुंदर बुक है बहुत ग्रंथ है किस प्रकार हमारे सिद्धांत को यथारूप में प्रस्तुत करना बहुत जोर से प्रस्तुत करना और साथ साथ में लोगों को भी आकर्षित करना इसकी कला जो है प्रचार की कला जो है उसका वर्णन एक ग्रंथ में हुआ है मैं निवेदन करूँगा सभी लोग आप उसको लीजिएगा